नमस्कार, आप सुन रहे हैं संयुक्त राष्ट्र समाचार सचिन गौड़ से। 28 जून 2019 के इस कार्यक्रम में सुनिए, विश्व में बढ़ते तनाव के परिदृश्य में जापान के ओसाका शहर में G20 समूह के नेताओं की बैठक। मादक दवाओं और पदार्थों के इस्तेमाल से होने वाली समस्याओं से 3.5 करोड़ लोग पीड़ित। फलस्तीनी शरणार्थियों को राहत पहुंचाने वाली UN एजेंसी के लिए वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने की अपील। और आंखों की संक्रामक बीमारी ट्रेकोमा का जोखिम झेल रहे लोगों की संख्या में बड़ी गिरावट। अब समाचार विस्तार से। जापान के ओसाका शहर में G20 समूह के नेताओं की वार्षिक शिखर वार्ता शुक्रवार को शुरू हो गई। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेश भी इस बैठक में शामिल होने ओसाका पहुंचे हैं और उनका उद्देश्य विश्व के बड़े नेताओं को वैश्विक चुनौतियों से अवगत कराना है। इससे पहले एक पत्रकार वार्ता में UN प्रमुख ने कहा कि ये बैठक बड़े राजनीतिक तनाव के परिदृश्य में हो रही है।
This G20 meeting takes place in a moment of high tension, high political tension.
ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया तनाव के पलों का सामना कर रही है। हम वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी देख रहे हैं, लेकिन वैश्विक राजनीति का भी तापमान बढ़ रहा है और इसे व्यापार और तकनीक के मुद्दों पर मतभेदों में देखा जा सकता है। इसे दुनिया के कई हिस्सों में कायम स्थिति में देखा जा सकता है, विशेषकर खाड़ी क्षेत्र में। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश का इशारा हाल के दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में तेल टैंकरों पर हुए हमलों के बाद अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ने से था। इससे इतर व्यापार मुद्दों पर बढ़ते तनाव, कर्ज के ऊंचे स्तर, अस्थिर वित्तीय बाजारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता पनप रही है और आर्थिक वृद्धि के सुस्त पड़ने की आशंका है। UN महासचिव ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को अपनी मुख्य प्राथमिकता करार दिया है। यूरोप में गर्म हवाएं चलने, अफ्रीका में सूखा पड़ने, अफ्रीका और कैरेबियाई देशों में तूफान चलने और ग्लेशियर पिघलने और बड़ी तीव्रता वाले प्राकृतिक आपदाओं के बार बार होने से गंभीर मानवीय हालात पैदा हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर इस साल सितंबर में न्यूयॉर्क में जलवायु शिखर वार्ता होनी है, जिसके जरिए UN प्रमुख वैश्विक जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने का प्रयास कर रहे हैं। मादक दवाओं के इस्तेमाल से स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रतिकूल असर अनुमान से कहीं ज्यादा गंभीर और व्यापक है। मादक पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC की नई रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आया है। रिपोर्ट दर्शाती है कि विश्व में मादक दवाओं और पदार्थों के इस्तेमाल से होने वाली समस्याओं से 3.5 करोड़ लोग पीड़ित हैं, लेकिन हर 7 में से सिर्फ 1 व्यक्ति का ही उपचार हो पाता है। रिपोर्ट के अनुसार ओपियोइड का सेवन करने वाले लोगों की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा है, जो पिछले अनुमानों की तुलना में 56% अधिक है। ओपियोइड से तात्पर्य अफीम और उसके अन्य रूपों जैसे हेरोइन और उससे बनने वाली दर्द निवारक दवाओं जैसे फेंटानिल और ट्रेमाडोल से है। 2017 में ड्रग्स के इस्तेमाल से 5,85,000 लोगों की मौत हुई, जिनमें 2/3 मौतों की वजह ओपियोइड का सेवन था। 2017 में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ड्रग्स के इंजेक्शन लगाए, जिनमें से 14 लाख लोग HIV और 56 लाख लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2017 में जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार 15 से 64 आयु वर्ग के 27 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ड्रग्स का सेवन किया। संतुलित और एकीकृत स्वास्थ्य और आपराधिक न्याय प्रणालियों को सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि फलस्तीनी शरणार्थियों को राहत पहुंचाने में जुटी UN एजेंसी को अपना काम लगातार जारी रखने के लिए मदद मिलती रहे। उन्होंने कहा कि एजेंसी के प्रयासों को सभी के लिए साझा दायित्व और साझा सफलता के तौर पर देखा जाना चाहिए। फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए UN राहत एवं कार्य एजेंसी लाखों बच्चों को स्कूली शिक्षा मुहैया कराती है और मानवाधिकार और सहिष्णुता जैसे UN मूल्यों को बढ़ावा देती है। मंगलवार को न्यूयॉर्क में UN एजेंसी के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के इरादे से प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस यानी प्रतिज्ञा सम्मेलन शुरू हुआ। 700 स्कूलों को संचालित करने और 5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी शरणार्थियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ UN एजेंसी किफायती और गुणवत्ता परक स्वास्थ्य सेवाएं भी सुनिश्चित करती रही है। इसके अलावा करीब 10 लाख लोगों के लिए भोजन सामग्री सहायता भी मुहैया कराई जाती है। महिलाओं के अधिकारों की स्थिति में हाल के दशकों के दौरान काफी सुधार देखा गया है, लेकिन पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता और परिवारों में ही महिलाओं के अन्य बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मामले अब भी सामने आते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूएन विमेन ने मंगलवार को जारी ताजा रिपोर्ट में ये निष्कर्ष पेश किए हैं। रिपोर्ट कहती है कि परिवार एक विविधता वाला ऐसा स्थान होता है जहां अगर सदस्य चाहें तो लड़के लड़कियों और महिलाओं व पुरुषों के बीच समानता के बीज आसानी से बोए जा सकते हैं। रिपोर्ट में विश्व भर से आंकड़े एकत्र करके गहराई से परिवारों में मौजूद परंपराओं, संस्कृति और मनोवृत्तियों का अध्ययन किया गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे कानून, नीतियां और कार्यक्रम लागू करने की जरूरत है जिनसे परिवारों के सभी सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ उनकी प्रगति और खुशहाली के लिए अनुकूल माहौल बन सके। विशेष रूप से ये लड़कियों और महिलाओं के लिए जरूरी है। लगभग 5 में से 1 देश में लड़कियों को लड़कों के समान संपत्ति और विरासत के अधिकार नहीं मिलते हैं। लगभग 19 देशों में महिलाओं को अपने पति का आदेश मानने की कानूनी बाध्यता होती है, साथ ही उनकी आमदनी और अन्य तरह के लाभों में भी कमी हो जाती है। रिपोर्ट ध्यान दिलाती है कि परिवार ही वो प्रमुख स्थान है जहां समानता और न्यायपूर्ण माहौल की बुनियाद पड़ती है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के अवसर पर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि विधवाओं को सहारा देने की जिम्मेदारी सबकी है और ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि उनकी आर्थिक व भावनात्मक मुश्किलें उनके लिए कहीं और मुश्किलें पैदा न कर दे। बहुत से देशों में विधवाओं को कोई सामाजिक व कानूनी संरक्षण हासिल नहीं है और इसके अभाव में विधवाओं की जीवन भर की जमा पूंजी उन्हें गरीबी के गर्त से बचाने के लिए काफी नहीं होती। इन्हीं समस्याओं का समाधान निकालने के लिए दिल्ली में हाल ही में एक बैठक का आयोजन हुआ। दिल्ली से हमारे साथी अंशु शर्मा की रिपोर्ट।
भारत में विधवाओं के हालात पर विचार विमर्श के लिए 24 जून को नई दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र परिसर में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विधवाओं की बेहतरी के लिए काम कर रही कई गैर सरकारी संस्थाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर जागोरी की चीफ कोऑर्डिनेटर और विधवाओं की समस्याओं की विस्तृत जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की सदस्य सुनीता नाथ का कहना था कि देश में विधवाओं की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने कहा,
बहुत जरूरी है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के द्वारा समाज को ये बताएं कि औरत की अपनी अस्तित्व है, अपनी अस्मिता है, अपनी डिग्निटी है और अपनी भूमिका है। एक बार हम उस पर काम करेंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि खास तौर से उन बहनों के लिए जो बहुत ही गरीब परिवार से हैं, तो उनके ऊपर बहुत मुसीबत आ जाती है, क्योंकि ना उनको अपना हक मिलता है, घर का हक, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, स्वास्थ्य की भूमिका है, बच्चों को पढ़ाने की भूमिका है। तो ये जो काम चल रहा है वो ये है कि क्या एकल औरत के अपने संगठन मजबूत हो जाए, किस तरह से हम अपने आर्थिक स्थिति, हमारी सामाजिक स्थिति को बदलाएं, किस तरह से हम समाज की सोच को बदलाएं।
महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही संस्था गिल्ड ऑफ सर्विस की अध्यक्ष मोहिनी गिरी ने कहा कि बिना देरी किए विधवाओं की समस्याओं पर ध्यान देने और उन्हें सहयोग देने के लिए जल्दी ही ठोस उपाय करने होंगे।
सुप्रीम कोर्ट से एक डायरेक्टिव आया है जहाँ के बहुत सारे उसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें जो हैं हमारी सिविल सोसाइटी को खटकती हैं और हमारी जानकारी आज बढ़ी है। इस जानकारी को हम उस समाज को देना चाहेंगे जिसको कि हम विधवा समाज बुलाते हैं, उनको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं और इसके लिए हम चेतना फैलाना चाहेंगे कि आप पढ़िए, आप अब लिखिए, अपने पैरों पे खड़े होइए, अपने को सक्षम बनाइए।
भारत में यूएन विमेन की डेप्यूटी रिप्रेजेंटेटिव निष्ठा सत्यम ने भी इस बात पर जोर दिया कि सरकार को विधवाओं की आमदनी और आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीतियां बनाकर उन पर अमल करना होगा। देखा यह गया है कि जिन देशों में विधवाओं के लिए पेंशन का प्रावधान भी है, वहां भी महिलाओं को वृद्धावस्था में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा गरीबी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में विश्व विधवा दिवस पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने विधवाओं के प्रति संवेदनशील होने पर जोर दिया और कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि विधवाओं को मानवाधिकारों के अनुरूप समाज में उचित स्थान मिले, उन्हें हाशिए पर न धकेल दिया जाए, ना उन्हें अदृश्य समझा जाए ना ही उनकी समस्याओं को।
दिल्ली से अंशु शर्मा की रिपोर्ट। ट्रेकोमा आंखों की एक संक्रामक बीमारी है जिससे लोग दृष्टिहीनता का भी शिकार हो सकते हैं। करीब 17 साल पहले विश्व में 1.5 अरब लोग ट्रेकोमा संक्रमण का जोखिम झेल रहे थे, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2019 में ये संख्या घटकर 14 करोड़ रह गई है, यानी 90% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। क्लामिडिया ट्रेकोमेटिस नाम के बैक्टीरियम से संक्रमण होने की वजह से ट्रेकोमा होता है। संक्रमित व्यक्ति की आंखों और नाक से संक्रमणकारी स्नान होने और उसके संपर्क में आने से ही बीमारी होती है। बच्चे खासतौर पर इस संक्रमण के वाहक होते हैं। नए आंकड़े दर्शाते हैं कि ट्रेकोमा से पीड़ित उन मरीजों की संख्या में कमी आई है जिनकी आंखों की रोशनी जाने का खतरा था। 2002 में ऐसे मरीजों की संख्या 76 लाख थी, जो अब घटकर 25 लाख रह गई है। लेकिन अब भी 44 देश ऐसे हैं जहां ट्रेकोमा संक्रमण के मामले देखने को मिलते हैं और विश्व भर में 19 लाख लोग इसके कारण दृष्टिहीनता या दृष्टि बाधिता से पीड़ित हैं। ट्रेकोमा संक्रमण के मामलों के बारे में जानकारी जुटाने और उन पर नियंत्रण पाने के लिए सेफ स्ट्रेटजी, सेफ रणनीति का सहारा लिया जाता रहा है। इसके लिए सर्जरी, एंटीबायोटिक्स दवाइयों, संक्रमण फैलने से रोकने के लिए चेहरे की स्वच्छता और पर्यावरण की बेहतरी पर जोर दिया जाता है। ट्रेकोमा संक्रमण के मामलों में बड़ी गिरावट आने की मुख्य वजह मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, नियंत्रण के लिए उठाए जाने वाले कदमों को व्यापक बनाने और उच्च गुणवत्ता वाले डेटा को जुटा पाने में सफलता बताई गई है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।